मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लौदातो सी के तीसरे अध्याय पर्यावरणीय संकट में मानवीय जड़ों की चर्चा करते हुए अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि हम यह कह सकते हैं कि आज की दुनिया की अधिकतर समस्याओं का उत्पन्न होना चाह के कारण होता है। हमें इस बात को स्वीकारने की जरूरत है कि तकनीकी उत्पादन अपने में निष्क्रिय नहीं है, वे एक संरचना का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन शैली और सामाजिक संभावनाओं को शक्तिशाली दलों के विचार और चाहतों के अनुरूप अनुकूलित बना देता है। श्रोताओं, एक अलग तरह के सांस्कृतिक प्रतिमान और तकनीकी को एक साधन मात्र के रूप प्रोत्साहन देना आज अविचारणीय है। तकनीकी प्रतिमान अपने में इतने प्रभावकारी बन गए हैं कि हम उनके बिना चीजों को नहीं कर सकते हैं, और उससे भी कठिन, हम उनकी आंतरिक तर्क से प्रभावित हुए बिना उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह संस्कृति के विरुद्ध बन गया है जहां हम उस जीवन शैली का चुनाव करते जिसका लक्ष्य अपने में तकनीकी से भी कुछ हद तक भिन्न होता है, जो अपनी लागत और शक्ति में हमें वैश्विक रूप में एक तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तकनीकी हर चीज को अपने लौह तर्क के अनुरूप समाहित करने की चाह रखती है, और वे जो इसके द्वारा घिरे हुए हैं अच्छी तरह से जान लें कि यह ना तो लाभ के लिए होता है और ना ही मानव जाति की भलाई करता है। मूल अर्थ में हम यहाँ शक्ति के उद्देश्य को सभी चीजों में एक नेतृत्व स्वरूप पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य खुले रूप में प्रकृति और मानव प्रकृति को अपने में पकड़ लेता है। निर्णयों को लेने की हमारी योग्यता, जो हमारी स्वतंत्रता और हर मानव की सृजनात्मक विकल्प को घटा देती है। तकनीकी प्रतिमान हमारी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन को भी अपने अधिकार में कर लेता है। अर्थव्यवस्था तकनीकी के क्षेत्र में हर विकास को लाभ के दृष्टिकोण से स्वीकार करता है। वह मानव पर इसके नकारात्मक प्रभाव की चिंता नहीं करता है। वित्त सच्ची अर्थव्यवस्था को अपने अधिकार में कर लेता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट से मिलने वाले ज्ञान को हमने संग्रहित नहीं किया है, और हम पर्यावरणीय विघटन से बहुत धीरे सीख रहे हैं। कुछ समाजों की धारणा यह है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था और तकनीकी पर्यावरण की सारी समस्याओं का निदान करेंगे, और वे इस बात पर लोकप्रिय और गैर तकनीकी शब्दों में तर्क करते हैं कि वैश्विक भूखमरी और गरीबी की समस्याओं का समाधान सरल रूप में बाजार में वृद्धि होने से होगा। वे कुछ आर्थिक सिद्धांतों से अपने को चिंता मुक्त देखते हैं, जिन्हें आज कोई चुनौती देने का साहस नहीं करता है। वे ऐसे सिद्धांतों को मौखिक रूप में यद्यपि बढ़ावा ना भी देते हों, लेकिन वे अपने कार्यों के माध्यम उनका समर्थन करते हैं। ऐसा करने के द्वारा वे उत्पादन के स्तर में संतुलन, धन के बेहतर वितरण, पर्यावरण की चिंता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में कोई रुचि नहीं दिखलाते हैं। उनका व्यवहार हमारे लिए यह प्रदर्शित करता है कि लाभ की चाह रखना उनके लिए काफी है। फिर भी बाजार अपने में संपूर्ण मानव विकास और सामाजिक समावेश की सुनिश्चितता प्रदान नहीं कर सकती है। वहीं हम अपने में एक तरह के सुपर डेवलपमेंट को पाते हैं जो बर्बादी और उपभोक्ता का रूप है, जिसे हम अमानवीय स्थितियों में अपने लिए अस्वीकार्य पाते हैं। वहीं हम अपने को आर्थिक संस्थानों और सामाजिक पहलुओं के विकास के संबंध में बहुत धीरे पाते, जो गरीबों को निरंतर उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराने में मददगार हो सकती हैं। हम वर्तमान में अपनी असफलताओं के सबसे गहरी जड़ों को देखने में असक्षम होते हैं, जिसका संबंध तकनीकी और आर्थिक विकास की दिशा, लक्ष्य, अर्थ और सामाजिक निहितार्थ से है। श्रोताओं, विशिष्टीकरण जिसका संबंध तकनीकी से है, हमारे वृहद दृश्य को देखने में कठिनाई उत्पन्न करता है। ज्ञान का विखंडन हमारे लिए ठोस प्रक्रिया में सहायक होता है और इसके बाद भी यह अक्सर समग्रता, चीजों के बीच संबंधों और व्यापक क्षितिज की सराहना में कमी लाती है और ऐसा होना इसे अप्रासंगिक बना देता है। यह सच्चाई वर्तमान में विश्व की समस्याओं के समाधान की राहों को कठिन बना देता है, विशेष रूप से पारिस्थितिकी और गरीबों के बीच संबंध के बारे में। ये समस्याएं अपने में एक परिदृश्य से या हितों के एक समूह से सुलझाई नहीं जा सकती हैं। एक विज्ञान जो बड़ी समस्याओं का निदान प्रस्तुत करता है, उसे आवश्यक रूप से चाहिए कि वह ज्ञान के उस क्षेत्र का अवलोकन करे जिसे आंकड़ों में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दर्शन शास्त्र और सामाजिक नैतिकता शामिल हों। लेकिन यह आज अपने में एक कठिन कार्य हो गया है। न ही हमारे लिए नैतिकता का सच्चा मापदंड ही है जहां कोई अपनी बातों को रख सके। हमारा जीवन इस भांति तकनीकी की स्थिति में एक समर्पण मात्र बनकर रह गया है। यह अस्तित्व के अर्थ के प्रमुख सिद्धांत स्वरूप देखा जाता है। एक ठोस परिस्थिति जिसका हम अपने में सामना कर रहे हैं, हमारे लिए असंख्य निशानियों की ओर इंगित कराती है कि क्या गलत हो रहा है, जैसे पर्यावरणीय विघटन, चिंता, जीवन में लक्ष्य का अभाव और सामुदायिक जीवन। हम पुनः इस बात को देखते हैं कि सच्चाइयां अपने में विचारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। श्रोताओं, पारिस्थितिकी संस्कृति को हम कुछ जरूरी और शीघ्रता से प्रत्युत्तर देने वाली समस्याओं, प्रदूषण, पर्यावरण विनाश और प्राकृतिक संसाधनों की श्रृंखला तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम चीजों को एक विशेष दृष्टिकोण से विचारों, नीतियों, एक अध्ययन के कार्यक्रम, एक जीवन शैली और एक आध्यात्मिकता की निगाहों से देखें, जो मिलकर तकनीकी प्रतिमान के हमले के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं होता तो सर्वोत्तम पारिस्थितिकी पहल भी अपने में उसी तरह एक वैश्विक तर्क में फंसकर रह जाएगी। सामने आने वाली प्रत्येक पर्यावरणीय समस्या के लिए केवल एक तकनीकी समाधान की तलाश करना, आपस में जुड़ी हुई चीजों को अलग करना है और वैश्विक प्रणाली की सच्चाई और गहरी समस्याओं को छुपाना है। फिर भी हम अपने दृष्टिकोण को विस्तृत कर सकते हैं। हमारे पास तकनीकी को सीमित करने और उसे दिशा देने की स्वतंत्रता है। हम इसे दूसरी तरह की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, जो अपने में अधिक उचित मानवीय सामाजिक समग्र है। प्रमुख तकनीकी प्रतिमान से मुक्ति हमारे लिए कभी कभी संभव है, जैसे कि जब छोटे उत्पादकों की सहकारी समितियां उत्पादन के कम प्रदूषणकारी साधनों को अपनाती हैं और जीवन, मनोरंजन और समुदाय के गैर उपभोक्तावादी मॉडल का चुनाव करते हैं। तकनीकी का उपयोग सीधे तौर पर लोगों के जीवन की ठोस समस्याओं के निवारण में किया जाता है, जो उन्हें अपने जीवन को अधिक सम्मानीय ढंग से और कम पीड़ा में जीने को मदद करता है। वास्तव में सुंदरता और उस पर चिंतन करने की इच्छा एक प्रकार की मुक्ति के माध्यम से न्यूनतमवाद पर काबू पाने में सफल हो जाती है, जो सुंदरता में और उसे देखने वालों में होती है। एक सच्ची मानवता हमारी तकनीकी संस्कृति के बीच में निवास करती है, जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह मानो एक बंद दरवाजे के नीचे धीरे धीरे रिसने वाले धुएं की तरह होता है। इन सारी बातों के बावजूद प्रतिरोध की स्थिति में क्या वे चीजें बनी रहेंगी जो अपने में सच्ची हैं? श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आओ रे आओ दर्शन पाने साथ चले, 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 नाचो रे झूमो ताली बजाओ संग चलो, नाचो रे झूमो ताली बजाओ संग चलो, प्रभु हमारा जी उठा है हर्ष मनाए नाचे गाए, आओ रे आओ दर्शन पाने साथ चले, आओ रे आओ दर्शन पाने साथ चले, आओ रे आओ दर्शन पाने साथ चले, आओ रे आओ दर्शन पाने साथ चले।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने सोमवार को हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों से मुलाकात की। वैटिकन में हुई इस व्यक्तिगत मुलाकात की पुष्टि वैटिकन प्रेस कार्यालय ने दी है। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार गजा में 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए इसराइली बंधकों के रिश्तेदारों से सोमवार सुबह को पोप की व्यक्तिगत मुलाकात वैटिकन के प्रेरितिक आवास में संपन्न हुई। बंधकों के परिवारों के इटली में रहने के दौरान राजनीतिक संस्थानों के विभिन्न प्रतिनिधियों और यहूदी समुदाय के सदस्यों के साथ भी मुलाकातें निर्धारित हैं। इसराइली बंधकों के रिश्तेदारों के साथ पोप की यह दूसरी मुलाकात है। नवंबर 2023 में संत पापा ने अपने निवास में बंधकों के रिश्तेदारों के एक दल से मुलाकात की थी। साथ ही गजा में युद्ध और मानवीय संकट से पीड़ित लोगों के रिश्तेदारों के एक अन्य दल से संत पापा ने अलग मुलाकात की थी। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परमधम पीठ विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने वैटिकन प्रेस कार्यालय में विभाग की हाल में प्रकाशित घोषणा डिग्निटास इन्फिनिटा अनंत गरिमा प्रस्तुत की। उन्होंने इसे याद रखने के लिए एक मौलिक दस्तावेज कहा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की गरिमा अपरिहार्य है। इस तथ्य पर जोर देने के लिए इसे किसी भी परिस्थिति से परे कहा जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पुरुष, महिला, बच्चा, चाहे वह इटली या इथोपिया में, इसराइल या गजा में, सीमा के अंदर या बाहर पैदा हो, संघर्ष में या शांति में, और किसी भी संस्कृति या जीवन की स्थिति में हो, समान, विशाल और अविभाज्य गरिमा होती है, जिसे मानवाधिकारों के विपरीत कोई युद्ध, अधीनता या कानून नहीं है जो उससे दूर या कम कर सकता है। इसके अलावा क्रिस्त धर्म के प्रभावशाली संदेश को और अधिक प्रत्यक्ष तरीके से जारी करने के लिए 5 साल काम करने के बाद 8 अप्रैल को प्रकाशित विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के दस्तावेज के लिए डिग्निटास इन्फिनिटा शीर्षक चुना गया, अर्थात ईश्वर अनंत प्रेम से हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस ने सोमवार को वैटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपरोक्त विवरण का खुलासा किया, जो कि पत्रकारों के साथ प्रेस कार्यालय में अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। कार्डिनल के साथ विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के सचिव मोनसिन्योर अर्मांडो मत्तेओ और रोम में तोर विरगाता एवं लुम्सा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर पाओलो स्कासेला भी उपस्थित थे, जिन्होंने विकलांगों की गरिमा के बारे में उपस्थित लोगों से बात की। कार्डिनल जिन्होंने समान रूप से सीधे सवालों के सीधे जवाब दिए, कभी कभी व्यंग्यात्मक एवं व्यक्तिगत व्याख्यानों के लिए भी जगह छोड़ी। पर्दे के पीछे और उच्च सैद्धांतिक मूल्य के इस दस्तावेज के प्रारूप के विवरण का खुलासा किया। ठीक उसी तरह जिस तरह 4 माह पहले फिदुचा सुप्लिकांस ने आशीष की प्रेरितिक भावना की घोषणा की थी, जिसमें समान लिंग के लोगों के अनियमित जोड़ों को भी आशीष देने की संभावना पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा निश्चित रूप से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी पोप फ्रांसिस के दिल में है, जो अपनी प्रेरितिक समृद्धि को विकसित करने के लिए धार्मिक संदर्भ के बाहर आशीष की समझ को व्यापक बनाना चाहते हैं। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलागर वियतनाम की राजनयिक यात्रा पर हैं, जिसमें वे प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और स्थानीय कलीसिया से भी मिलेंगे। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलागर 9 अप्रैल को वियतनाम की अपनी यात्रा शुरू की, जहां वे रविवार 14 अप्रैल तक रहेंगे। वैटिकन राज्य सचिवालय के एक्स अकाउंट में महाधर्मदर्श के कार्यक्रमों की सूची जारी की गई है। कार्यक्रम में विदेश मंत्री बुई थान सोन और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ मुलाकातें शामिल हैं। वे आंतरिक मंत्रालय में राजनयिक मुलाकात भी करेंगे और हनोई में संत जोसेफ महागिरजा घर में एक ख्रिस्त त्याग समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। महाधर्मदर्श कलाघर की यात्रा में मेजर सेमिनरी के छात्रों से मिलने और यू के फू कैम महागिरजा घर में एक सामूहिक प्रार्थना में अध्यक्षता करने के लिए यू के चर्च प्रांत की यात्रा भी शामिल है। महाधर्मदर्श गलाघर ने स्वयं 18 फरवरी को वैटिकन प्रेरितिक आवास में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ पोप फ्रांसिस की मुलाकात के दौरान वियतनाम में अपनी यात्रा का उल्लेख किया था। एक कार्यक्रम के बाद बोलते हुए महाधर्मदर्श ने मुलाकात के लिए अपनी सराहना व्यक्त की थी और आशा प्रकट की थी कि वियतनामी कैथोलिक समुदाय को अन्य महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों में इस प्रगति से लाभ होगा। दिसंबर में वियतनाम में एक परमधम पीठीय प्रतिनिधि और सिंगापुर में प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदर्श मारिक जेलवेंस्की को नियुक्त करने के लिए वैटिकन और वियतनाम एक समझौते पर पहुंचे। समझौते पर जुलाई 2023 में राष्ट्रपति वो वान थोंग की वैटिकन यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जो वियतनाम परमधम पीठ संयुक्त कार्य समूह का 10वां सत्र था। महाधर्मदर्श कलाघर ने इस वर्ष के भीतर वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलेन की देश की संभावित यात्रा का संकेत दिया है और पोप फ्रांसिस की संभावित भविष्य की प्रेरितिक यात्रा के बारे में आशा व्यक्त की है। वियतनाम और वैटिकन ने 1975 में राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे, लेकिन 1990 के बाद सकारात्मक विकास शुरू हुआ। 2011 में पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने एक अनिवासी परमधम पीठीय प्रतिनिधि नियुक्त किया था और 2023 में दोनों पक्षों ने एक निवासी प्रतिनिधि के लिए एक कानून की स्थापना की। पोप फ्रांसिस ने सितंबर 2023 में वियतनाम की कलीसिया को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने कैथोलिक विश्वासियों से अच्छे ख्रिस्ते और अच्छे नागरिक के रूप में रहने का आग्रह किया था। उन्होंने उनसे धर्म, जाति या संस्कृति के भेदभाव के बिना ईश्वर के प्रेम की गवाही देने का आग्रह किया था और समन्वय को पहचानने एवं विविधताओं का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया था। पोप ने कहा था कि यह दृष्टिकोण अपनी कलीसिया को जीवंत बनाने और दैनिक जीवन में सुसमाचार का प्रचार करके अच्छे ख्रिस्ते एवं अच्छे नागरिकों के रूप में कैथोलिकों की पहचान का प्रतीक है। यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर ब्रसेल्स में 11 अप्रैल को होने वाले आगामी मतदान से पहले यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्षों ने अपना कड़ा विरोध दोहराया और विचारधाराओं को थोपने की निंदा की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।